नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शाम 5 बजे तक लगभग 90% मतदान हुआ। दक्षिण दिनाजपुर में 93% से अधिक मतदान की खबर है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए शाम 5 बजे तक रिकॉर्ड 82% से अधिक मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में आज मतदान के दौरान विभिन्न स्थानों से मतदाताओं को धमकाने, हिंसा और राजनीतिक दलों के बूथ कार्यकर्ताओं पर हमलों की खबरें मिली हैं। कुछ मतदान केंद्रों पर फर्जी मतदान होने की भी बात सामने आई है। मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ और उम्मीदवारों पर हमले की छिटपुट घटनाएं भी हुई हैं। कुमारगंज में भाजपा उम्मीदवार पर हमले के मामले में 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। निर्वाचन आयोग को मतदान के दौरान गड़बड़ी की अब तक लगभग 400 शिकायतें मिली हैं। महाराष्ट्र में बारामती और राहुरी विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में बारामती में शाम 5 बजे तक 52% से अधिक जबकि राहुरी में 50% से अधिक वोट डाले गए। सरकार पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न स्थिति में नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति लगभग 70% है। उन्होंने कहा कि कल तक लगभग 8,400 टन वाणिज्यिक एलपीजी वितरित की गई थी। सुश्री शर्मा ने कहा कि 1 अप्रैल से अब तक 5 किलो के 17 लाख से अधिक सिलेंडर बेचे गए, इनमें से लगभग 86,000 सिलेंडर कल बेचे गए।
हमारे घरेलू एलपीजी सप्लाईज नॉर्मल है। कल भी 52 लाख से अधिक घरों को एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई की गई है। बुकिंग पहले से अब कम हुई है, लगभग 44 से 45 लाख के करीब प्रति रोज बुकिंग हो रही है। और जो हमारा डीएसी या डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड है उसके साथ लगभग 94% डिलीवरी की जा रही है। इसका महत्व ये है कि इससे डायवर्जन को रोकने में काफी मदद मिल रही है।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अपर सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि किसी भी भारतीय जहाज पर गोलीबारी नहीं हुई।
मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उन विदेशी झंडे वाले जहाजों पर गोलीबारी में कोई भी भारतीय नाविक घायल नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। कंट्रोल रूम में हमने कुल 7,403 कॉल्स और 15,600 से ज्यादा ईमेल का प्रबंधन किया है। पिछले 24 घंटों में हमें 161 कॉल और 320 ईमेल मिले हैं।
भारत ने फ्रांस के हवाई अड्डों से गुजरने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त ट्रांजिट की घोषणा का स्वागत किया है। फ्रांस ने इस समझौते को 10 अप्रैल से लागू किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस वर्ष फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुंबई बैठक में ये सहमति बनी थी। श्री जायसवाल ने कहा कि ये निर्णय भारत और फ्रांस के बीच स्थायी साझेदारी को दर्शाता है और इससे लोगों की सुगम आवाजाही तथा दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB ने मादक पदार्थों के विरुद्ध मालदीव में लागू कठोर कानूनों के विषय में वहां की यात्रा करने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। हाल ही में संशोधित और इसी वर्ष मार्च से प्रभावी मालदीव के मादक पदार्थ अधिनियम में नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए आजीवन कारावास सहित कड़ी सजा का प्रावधान है। इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री बी श्रीनिवास वर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक के माध्यम से राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आज संवाददाता सम्मेलन में श्री वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में मुंबई 7वें और चेन्नई 8वें स्थान पर है। पंजाब पहले और राजस्थान दूसरे नंबर पर है। थॉमस और उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु भारत का नेतृत्व करेंगे। थॉमस कप में कल भारत का मुकाबला कनाडा से और उबर कप में भारतीय टीम डेनमार्क से खेलेगी। डेनमार्क में ये प्रतियोगिता 3 मई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।